ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के सतर्कता निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को बर्खास्त किया। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को गिरफ्तार किया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार तेज। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और दिल्ली सहित देश भर में ईद उल फित्र मनाई जा रही है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली के सतर्कता निदेशालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को बर्खास्त कर दिया है। सतर्कता निदेशालय ने उनके खिलाफ 2007 के एक लंबित मामले का हवाला देते हुए ये आदेश पारित किया है। विभाग ने कहा कि विभव कुमार की नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्रीय सिविल सेवा के नियमों का उल्लंघन किया गया था। विभव कुमार पर सरकारी काम में बाधा डालने और शिकायतकर्ता को धमकी देने का भी आरोप है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने विभव कुमार से कथित शराब घोटाले के संबंध में पूछताछ भी की थी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को दिल्ली की कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने इस मामले में हाल में तिहाड़ जेल में के कविता से पूछताछ की थी। वे इस समय प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। निदेशालय ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी भंडारण संस्था दालों के साप्ताहिक स्टॉक की जानकारी दें और इसका सत्यापन भी किया जाए। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने कल नई दिल्ली में राज्य उपभोक्ता मामले, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभागों के प्रधान सचिवों तथा सचिवों के साथ बैठक की।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि प्रमुख बंदरगाहों और दाल उद्योग केंद्रों में स्थित गोदामों में भी स्टॉक का समय समय पर सत्यापन किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने पोर्टल पर स्टॉक के बारे में गलत जानकारी देने वाली संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जमाखोरी और बाजार में हेराफेरी को रोकने के लिए दालों के स्टॉक की स्थिति और कीमतों के रुझानों पर कड़ी नजर रखने को कहा गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 प्रमुख दालों अरहर, उड़द, चना, मसूर और मूंग के अलावा आयातित पीली मटर के स्टॉक की स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा गया है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सतर्कता निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को बर्खास्त किया। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को गिरफ्तार किया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार तेज। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और दिल्ली सहित देश भर में ईद उल फित्र मनाई जा रही है। दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रचार तेज कर दिया है। सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सही राम पहलवान ने आज गोविंदपुरी कालकाजी में पदयात्रा की। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी भी उनके साथ थी। आतिशी ने विश्वास जताया कि इस बार जनता सही राम पहलवान का साथ देगी क्योंकि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विकास के कई कार्य किए हैं। नई दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने आज पूर्वांचल मोर्चा की संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया। उत्तर पश्चिम दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने आज बुद्ध विहार, विजय विहार और सुल्तानपुरी इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में किए गए विकास कार्यों के आधार पर लोगों से भाजपा के पक्ष में वोट देने की अपील की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर दिल्ली नगर निगम की पूर्व महापौर आरती मेहरा और भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट की भी उपस्थित थे। सुश्री मेहरा ने कहा कि आज प्रदेश कार्यालय में संजय अग्रवाल, नरेंद्र जैन, बापरौला से निर्दलीय निगम चुनाव लड़ने वाले रविन्द्र फोगाट और सामाजिक कार्यकर्ता डिम्पल खन्ना सहित अन्य पदाधिकारी अपने 200 से अधिक समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने सभी का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि देश में मोदी सरकार की नीतियों से लगातार जनता के अलावा दूसरी पार्टी के नेता भी प्रभावित हो रहे हैं। 18वें लोकसभा चुनाव के लिए देश भर में प्रचार जोरों से चल रहा है। स्वाधीनता के बाद भारत में पहले आम चुनाव कैसे हुआ, इस बारे में सुनते हैं एक विशेष रिपोर्ट।
वर्ष 1951-52 में पहले आम चुनाव के बाद भारत ने अपनी लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान कई अहम पड़ाव देखे। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले पहले आम चुनाव को भारत की बड़ी लोकतांत्रिक उपलब्धि के तौर पर जाना जाता है। देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के नेतृत्व में हुए इन चुनावों ने भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का आधार बुना, जिनमें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की खास भूमिका रही। पहले आम चुनाव के आयोजन में करीब 10,45,00,000 रुपये की लागत आई थी। तमाम बाधाओं के बावजूद 68 चरणों में लगभग 2,00,000 मतदान केंद्रों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई, जिनमें से 27,000 से अधिक केंद्र महिलाओं के लिए थे। इस चुनाव में लगभग 53 पार्टियों और 533 निर्दलीय उम्मीदवारों ने 479 सीटों के लिए चुनाव लड़ा था। उस समय भारत की कुल आबादी लगभग 36 करोड़ थी, जिनमें से 17,32,00,000 लोग वोट देने के योग्य थे। हिमाचल प्रदेश के चीनी गांव में भारत के पहले आम चुनाव का सबसे पहला मत डाला गया था। इस चुनाव में 35.7% मतदान हुआ। इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले नंबर पर रही, वही कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे और सोशलिस्ट पार्टी तीसरे स्थान पर रही। अर्पिता चौधरी की रिपोर्ट के साथ आदर्श कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
हरियाणा में आज महेंद्रगढ़ जिले में कनीना ब्लॉक के उन्हानी गांव में एक निजी स्कूल बस पलट जाने से 6 बच्चों की मृत्यु हो गई और कम से कम 15 घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि घायलों का इलाज रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अस्पतालों में चल रहा है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दुर्घटना के तुरंत बाद महेंद्रगढ़ के उपायुक्त से फोन पर बात की और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि हादसे के कारणों को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और घायल बच्चों के इलाज के लिए जरूरी मदद की जाएगी। हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने राजपत्रित अवकाश पर स्कूल खोले जाने को नियमों की उल्लंघना बताया है और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस दौरान हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा है कि सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को परिपत्र जारी कर सभी स्कूल बसों की फिटनेस जांच करवाई जाएगी। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा यह दुर्घटना हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिवारों को हर प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में हुई किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने अंग प्रतिरोपण गिरोह का पर्दाफाश होने पर हरियाणा और राजस्थान सरकारों को नोटिस जारी किया है। मीडिया की खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने दोनों राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों को 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने मानव अंग तस्करी पर लगाम लगाने के लिए किए गए उपायों के बारे में भी जानकारी मांगी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सहित देश भर में आज ईद उल फित्र का पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के जामा मस्जिद, फतेहपुर मस्जिद और शाही ईदगाह में नमाज अदा की गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा कि ये त्यौहार रमजान के पवित्र महीने के दौरान उपवास और प्रार्थना के समापन का प्रतीक है तथा प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार एकता, क्षमा और पुण्य को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि ईद का पर्व गरीबों तथा वंचित लोगों की मदद करने और उनके साथ खुशियां बांटने का मौका है। उन्होंने कहा कि यह त्यौहार सभी को शांतिपूर्ण जीवन जीने और समाज की समृद्धि की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि ईद उल फित्र हमें करुणा, उदारता और एकता के मूल्यों की याद दिलाता है। उन्होंने कामना की कि ईद सभी के जीवन में खुशी, संतुष्टि और दुआएं लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में सभी के लिए करुणा, एकता और शांति की भावना पैदा करने की कामना की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भी लोगों को ईद उल फित्र की बधाई दी है। उन्होंने कामना की कि ये पर्व सभी के जीवन में खुशियों के साथ साथ देश में प्रगति और समृद्धि लेकर आए। मौसम विभाग ने कल नई दिल्ली में अप्रैल से जून के लिए वर्चुअल माध्यम से चक्रवात अभ्यास का आयोजन किया। ये द्विवार्षिक अभ्यास चक्रवात पूर्व और चक्रवात के बाद की स्थिति के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए किया गया। एक रिपोर्ट।
मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि देश के पास सर्वोत्तम प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और मौसम पूर्वानुमान मॉडल हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और भारतीय सशस्त्र बलों के सतत सहयोग के साथ साथ चक्रवात पूर्वानुमान में हाल के दिनों में मौसम विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। डॉ महापात्र ने बताया कि विभाग ने पिछले दशक के अनुमानों की तुलना में 50% से अधिक की सटीकता के साथ एक स्वदेशी प्रणाली विकसित की है। उन्होंने मौसम में बदलाव की निगरानी करने के लिए मल्टी मॉडल असर प्रणाली स्थापित करने की बात भी कही। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज शाम 7 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 228 दर्ज किया गया। 0 से 50 तक वायु गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। 51 से 100 तक के बीच वायु गुणवत्ता संतोषजनक, 101 से 200 के बीच सामान्य तथा 201 से 300 के बीच में ये खराब मानी जाती है। दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लक्षद्वीप में आधी रात को 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र लक्षद्वीप समुद्र के 27 किलोमीटर की गहराई में मिनीकॉय द्वीप से 195 किलोमीटर उत्तर में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा ज्योतिराव फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि महात्मा फुले एक दूरदर्शी समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अन्याय से लड़ने और समानता को बढ़ावा देने में समर्पित कर दिया। उनके विचार असंख्य लोगों को आत्मबल प्रदान करते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के सतर्कता निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को बर्खास्त किया। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को गिरफ्तार किया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार तेज। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और दिल्ली सहित देश भर में ईद उल फित्र हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।